आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, सरसा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 133वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में यथार्थ की अनुभूति द्वारा जीवन के सत्य पर प्रकाश डाला गया है। सेवा ही जीवन में सर्वोपरि है। आगे आंध्र प्रदेश राज्य के जिला गुंटूर में कृष्णा नदी के किनारे बसे अमरावती तहसील से 16 किलोमीटर दूर बसे माठकुली गांव में विश्वनाथ सपरिवार रहते थे। उनका पुत्र केशवा अमरावती में शपथ लिख रहता था, जहां सरकारी स्कूल में हिंदी का अध्यापन का कार्य करता था। पिता विश्वनाथ गांव में ही हिंदी प्रचार सभा नाम की संस्था में सभी वर्ग को हिंदी का अध्ययन कराते थे। काफ़ी संख्या में युवक जिन्हें अन्य हिंदी राज्यों में नौकरी पाने की इच्छा हो, हिंदी अनिवार्य रूप से सीखने आने लगे। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। थोड़ी खेती भी थी, जिसमें चावल आलबटाई में अन्य परिवार से कराए करते थे। एक दिन अचानक 2 दिन की बीमारी में पत्नी का देहांत हो गया, तो सप्ताह के अवकाश पर इस मौके पर पुत्र सपरिवार उपस्थित हुआ। सारी कार्य निपटाने के बाद पिताजी से निवेदन किया कि अब आपको हमारे साथ ही अमरावती जाकर रहना होगा। खाना बनाने की समस्या का अन्य कोई उपाय नहीं रह गया है। लेकिन पिता पत्नी के समय से ही अमरावती जाना टालते आ रहे थे, सो अब भी वह लगभग 1 वर्ष तक अमरावती जाकर रहने को सुनिश्चित नहीं कर पाई। पुत्र को गांव के लोग जब अधिक ताना देने लगे कि वृद्धावस्था में तुम्हारे पिता को जब तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है, तब तुम उन्हें इस तरह इग्नोर कर रहे हो, अतः इस बार पुत्र केशवा ने पिता को जिद कर अपने साथ अमरावती ले जाने में गांव वालों के विशेष जोर देने पर सफल हो गया। गांव का मकान व खेती भी बिकवा विशेष आग्रह पर अमरावती अपने साथ ले गया। घर व खेत बेचकर जो रकम मिली, उससे सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिया। प्रारंभ में बहू बेटे ने पिता का बहुत ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। एक दिन रविवार को दोपहर विश्वनाथन ने बहू को याद चाय बनाने का आग्रह किया, तो प्रत्युत्तर में बहू ने कहा कि सोसाइटी के मेन गेट के सामने ही दूध की डेयरी है, आप दूध ले आवें, तब तक मैं चाय का प्रबंध करती हूँ। पिता बहू के सुझाव पर दूध लेने घर से निकल गए। तभी बहू ने अपने पति से कहा कि पिताजी को यहाँ आए लगभग 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन यह बाहर कहीं अकेले पार्क वगैरह में भी नहीं जाते हैं, केवल जब हम ही इन्हें घुमाने ले जाएं तभी कहीं जाते हैं। उनके कारण हम कभी स्वतंत्रता महसूस नहीं करते, हर वक्त अनुशासन में रहना भी क्या संभव है। यह सारी वार्ता पिताजी ने सुन ड्राइंग रूम में ही दूध लेकर बैठ गए। यद्यपि प्रत्युत्तर में पुत्र केशवा ने कहा कि तुम इस प्रकार क्यों सोचती हो, पिताजी अब कहाँ जाएंगे, बहू बेटे के संवाद सुन पिताजी को बहुत उदास हो गए। सोचने लगे कि गांव वालों के आग्रह एवं भावुकतावश गांव का मकान व खेत बेचने का मैंने गलत निर्णय ले लिया, अब इसका कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा। ड्राइंग रूम में पिता को उदास बैठे देख बहू ने कहा कि बाबूजी, आज आपकी पसंद का डोसा व कर्ड राइस बनाया है, कृपया अंदर डाइनिंग टेबल पर पधारें। किंतु पिता ने बहू के संवाद में बिना कोई रुचि दिखलाई कहा कि अभी मैं पार्क में अपने मित्र के से मिलने जा रहा हूँ, आने में थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है। पिता का रूख का व्यवहार सुन बहू को लगा कि शायद पिताजी ने हमारी उनसे संबंधित चर्चा को सुन लिया है, इसीलिए इतने उदास हो गए हैं। अन्यथा इनका तो यहाँ कोई दूर दूर तक मित्र ही नहीं है, फिर यह किससे मिलने जा रहे हैं। पिताजी घर से तुरंत निकल गए, सुनसान सड़क पर निरंतर चलते जा रहे थे। काफ़ी चलने पर थक गए, रास्ते में एक बेंच दिखलाई दी और थोड़ा सुस्ताने के हेतु जाकर बैठ गए। अंधेरा होने पर घर से काफ़ी दूर आ जाने से थोड़ा चिंतित हो रहे थे कि अचानक कोई वृद्ध व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो पूछने लगा, भाई विष्णुनाथन यहाँ कैसे बैठे हो? धुंधले प्रकाश में वृद्ध को पहचानते हुए एकदम आश्चर्य से विष्णुनाथन खड़े हो चौंक कर वृद्ध को देख पूछने लगे, अरे वर्षों बाद भी आपने पहचान लिया? मित्र तुम्हें वर्षों बाद देख मैं रोमांचित हो रहा हूँ। वृद्ध धर्मराव द्वारा सारा वृत्तांत विस्तार से सुनने के उपरांत धर्मराव ने कहा कि भाई विश्वनाथन आप अन्यथा न ले में विपरीत परिस्थिति तो तुम्हारी ही बनाई हुई है। तुम्हें याद है एक दिन तुम्हें ने कहा था कि यार माँ बाप का क्या करें, वह तो साई की तरह हमारे साथ ही चिपके रहते हैं, तो यह सब तो समय का तकाजा है। तुम्हें बेटा बहू को समय समय पर एकांत में रहने देना ही चाहिए, उसके लिए मेरे पास उपाय है, मंजूर हो तो बतलाऊं। मैं भी बरसों विशाखापट्टनम रहा था, अब लड़के के साथ सपरिवार रहता हूँ बिना किसी बाधा के। मैंने यहाँ कई एनजीओ व सेवा संस्थाएं ज्वाइन की हुई हैं, जिनमें हरित क्रांति हेतु पौधे लगाना, अनाथ लोगों को बस खाने खट्टा कर सेवा करना आदि आदि। परमार सेवा हेतु समय देने का संकल्प करें तथा नियमित बिना किसी किंतु परंतु के करते रहें, फिर देखना कितने व्यस्त हो जाते हो। धर्मराव की बात सुन विश्वनाथन के मन से जैसे हीनता का बोझ उतर गया, वह एकदम प्रसन्न हो उन्हें कल ही घर आने का आग्रह कर अपने घर को जल्दी जल्दी लौट गई। रास्ते भर भविष्य की सेवा योजना बनाते हुए घर आ प्रसन्नचित डाइनिंग टेबल पर डिनर ले सो गए। विश्वनाथन विचार करने लगे कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी हुई है, जब हम औरों को उनकी खुशियाँ देना सीख जाएंगे तो अपने आप ही हमारी खुशियाँ मिल जाएंगी, और यही मानव जीवन का उद्देश्य भी है। वस्तुतः सुख और दुख की अनुभूतियों को परिस्थितियों पर नहीं मन स्थिति पर ही निर्भर माना जाना है। ये अनुभूतियाँ किसी खास व्यक्ति या वस्तु एवं किसी विशेष परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। जिस कार्य में किसी एक व्यक्ति को सुख मिलता है उसी कार्य में दूसरा अपने दुर्भाग्य का रोना रोता है। अतः सुख और दुख की मान्यताओं को हम अपनी मन स्थिति के अनुरूप आरोपण करते हैं। व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण होने में सुख और उनके पूर्ण न होने में दुख का अनुभव करता है, अतः ये अभिलाषाएँ उसके मन की उपज हैं, तो सुख और दुख भी उसके मन की उपज नहीं है। सुख और दुख भी उसके मन की उपज ही है भैया। भाइयों एवं बहनों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें, फॉलो लाइक भी करें। धन्यवाद।